हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है इस यात्रा की सेवा के भागवत के आज पूर्णाहुति के दिन के सत्संग में। भागवत नित्य है लेकिन अपना पूर्ण आहुति का अर्थ होता है कि जो कुछ हमने अभी तक सुना है उसको धारण करेंगे, खत्म नहीं हो गया। व्हाटएवर वी हर्ड वी शुड जस्ट कीप मेडिटेटिंग ऑन, उसके ऊपर ध्यान करते रहेंगे। तो इसको समापति नहीं कहते, कहते हैं इसको कहते हैं पूर्ण आहुति। इसका मतलब अभी जो कुछ मिला है इसको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, फिर आगे इसमें बढ़ेंगे। तो भागवत नित्य है और ये ऐसे चलता रहेगा प्रवाह रूप में। गत 12-1 दिन से हम भागवत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। दसम स्कंद श्रीमद् भागवत भगवान का सुंदर मुखमंडल है, स्माइलिंग लोटस फेस। और दसम स्कंद भागवत के दस विषयों में से आश्रय है। आश्रय जो भागवत में 10 विषय बताए उसमें आश्रय, दसम स्कंद आश्रय है। आश्रय का मतलब भगवान ही हमारे आश्रय है, उसका ही शरण में जाना है। तो इस स्कंद की कथाओं में कल हमने भगवान को 3 साल 4 महीने तक गोकुल के अंदर लीलाओं का दर्शन किया। दूसरे 3 साल 4 महीने तक भगवान वृंदावन में रहे, जिसके अंतर्गत गोवर्धन भी आता है। और तीसरा पड़ाव भगवान के 3 साल 4 महीने का कुछ दिन आगे पीछे नंदगांव में। 11 साल की आयु तक भगवान वृंदावन में रहे और फिर अक्रूर को भेजा कंस ने और श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए और 100 साल तक वापस मथुरा लौटकर नहीं आए। तो अब कृष्ण कहाँ है? कल हमने छोड़ा था मथुरा में। पहले दिन जाते ही धोबी का अंत्येष्टि क्रिया किया, कपड़े लिए, टेलर से सुंदर अल्टर करा के सब चमके और फिर सुधामा माली ने सुंदर पुष्प मालाएं पहना दी भगवान को प्रेम से। और कुब्जा ने, टेढ़ी कुब्जा, भगवान को अंगराग लगा दिया और भगवान ने उसको सुंदर नारी बना लिया और उसने भगवान का पल्लू पकड़ लिया। बोला इतना मुझे सुंदर भी बनाया है, सुंदरी भी कहा है, तो अब तो आप मेरे घर चलो। भगवान ने कहा आऊँगा, अब काम पूरा करूँगा, आपके पास भी आऊँगा। भगवान ने अक्रूर को कहा था आपके पास आऊँगा, भगवान ने कुब्जा को कहा था आपके पास आऊँगा, इसलिए भगवान इनके पास जाएंगे काम पूरा करके। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ और ग्वाल बालाओं के साथ, नए कपड़े, आजकल कौन से कपड़े, पहले फैशनेबल कपड़े कंस के पहने हुए हैं, ग्वालों वाला बदल दिया है। आज रंगमंच में गए, धनुष को तोड़ दिया, धनुष को 2 टुकड़े में तोड़ के सिपाहियों को मार दिया और अपने बाप नंद बाबा के पास जाके, जहाँ उनकी बैलगाड़ियाँ थी, वहाँ रात को भोजन किया, दूध पिया गाय का और सो गए। फूड फॉर सोल, रात को गाय का दूध पिया और सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे, कंस को समाचार मिला यज्ञ का धनुष तोड़ दिया, कृष्ण बलराम ने तोड़ दिया, हमारे सैनिक मार दिए। भय तो पहले से था, पहले से डर रहा था। कल वो जो हमारा बड़ा हाथी है ना, कुबलिया पीड़, उसको ले जाके पहले खड़ा कर देना, वो रंगमंच के अंदर आना ही नहीं चाहिए। कंस भय के कारण ऐसे, अब कृष्ण बलराम रंगमंच की तरफ जा रहे हैं सज धज के। रंगमंच में चारों ओर से मथुरावासी बैठे हैं, नंद बाबा और ग्वाल बाल ऊपर बैठे हैं, सामने बड़े स्टेज के ऊपर कंस अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठा हुआ है, बीच में बहुत बड़े पहलवान चाणूर मुष्टिक थल तोशल खड़े हैं, ऐसे कर रहे हैं। कृष्ण बलराम अंदर जाने लगे, कौलिया पीड़ सामने खड़ा हो गया, ऊपर से महावत, कृष्ण बलराम इसको हटाओ रास्ते से, हमको अंदर जाना है। ये नहीं हटेगा, ऊपर से बोलता है, उसको कृष्ण बलराम की तरफ बढ़ा रहा है। बलराम जी कहते हैं कृष्ण ये नहीं हटेगा, बोले फिर हमको है, हमको इसको हटाना पड़ेगा, क्या करेंगे? बोले इसको पकड़ो इसके दांत से, पहले तो इसके पूंछ से पकड़ो, पूंछ से पकड़ के ऐसे खींचा पीछे, और खींचने के बाद हाथी तो उनकी तरफ जैसे आने लगा, एक उसका दांत निकाला, एक भाई ने दूसरा दांत निकाला दूसरे भाई ने, और सूंड से ऐसे खींचा नीचे, और जैसे नीचे आया महावत नीचे गिरा, और हाथी और महावत दोनों को भगवान ने उद्धार किया। अब एक लाल खून से लता हुआ दांत हाथी का एक कंधे पे, दूसरे के दूसरा, अंदर जैसे प्रवेश किया, कंस बोलते कौन है वो, कौन आ रहा है? बोला महाराज कृष्ण। बोला उसे कंधे के ऊपर क्या है? कोहलिया पीड़ के दांत उठा के आ रहे। कोहलिया पीड़ मर गया महाराज, कोहलिया पीड़ मर गया। सल तो चल खल जल्दी करो, चारों और मुस्टिक इसको यानी आने तो जल्दी करो जल्दी करो। वहां सुखदेव गोस्वामी लिख बोल रहे हैं और व्यास देव ने लिखा है कि ऊपर खड़े हुए जो बैठे हुए रंगमंच में लोग कहते हैं देखो तो कितने सुंदर है, आंखों का उत्सव है, इनको देखना ही, आंखें मिली ही इनको देखने के लिए हैं। मथुरावासी कहते हैं हमारा तो भाग है, इतने दिन ब्रजवासियों ने आनंद लिया है, लेकिन ये बेचारे कोमल हृदय वाले नजदीक 11 साल के बच्चे और कितना अन्याय कर रहा है कंस, इतने मोटे मोटे ये जो रेसलर है उनके साथ इनको लड़ाया जा रहा है, ये अन्याय है, ये धर्म के विरुद्ध है। ग्वाल बाल कहते हमारा भैया दाऊ भैया आया, कन्हैया भैया आया, हमारा भैया, वो ऐसे नारे लगा रहे। कंस देखता है ये मेरा मौत है, ये मेरा मृत्यु है आ रहा है सामने। चाणूर मुष्टिक कहते हैं बलराम कृष्ण आओ हमारे साथ युद्ध करो। कृष्ण बलराम कहते देखो हम छोटे बच्चे हैं, आप बड़े रेसलर हैं, हम आपसे कैसे युद्ध करें? आप कैसे नहीं युद्ध करेंगे? कोहलिया पीड़ को मार के आ गए, सिपाहियों को मार दिया, आप बहुत सारे पहले पूतना को मारा, अब आपको हमारे साथ करना पड़ेगा मल्ल युद्ध। बलराम जी को कृष्ण ने देखा, कृष्ण बलराम जी को बोला चले। एक ने चारों को पकड़ा, एक ने मुस्टिक को पकड़ा, दो हाथ इधर घुमाए, एक को इधर फेंका इधर। कृष्ण ने बोला अभी इसके भाई आते हैं, इनको आप देखना बलराम जी, ये सल तोशल को मैं जरा मामा का हाल अवाल लेता हूं। और कृष्ण एकदम रंगमंच के ऊपर कूदे, कंस तलवार उठा के, अभी आखिरी लास्ट वार था, भगवान ने बालों से खींचा कंस को नीचे ले आके नीचे बिठा के छाती के ऊपर बैठ के दो मुक्के दे मारे ऐसे, एक दो तीन, मामा राधे श्याम और मामा के प्राण निकल गए। अब कंस का वध हो गया, ग्वाल बाल बोलते दे मार भाव रे बाप, धाऊ 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 दे मार ऐसे, जैसे कभी दो टीमें लड़ती है ना, तो जिस टीम का आदमी ऊपर होता है वो नारा लगाते हैं, तो ग्वाल बाल बोलते हैं दे मार दो दे मार दो, तो बड़ा ऊपर से उनको मजा आ गया। यहाँ कंस का भगवान ने अंत कर दिया और भगवान वहां से सीधा उग्रसेन को आजाद किया। पहले महाराज उग्रसेन को आजाद किया कि अब आप राज आपका है निष्कंटक, और वसुदेव देवकी से मिलने गए। वसुदेव देवकी पहले तो उनको देखा, अरे उन्होंने सूत की ग्रह से छोटे से बच्चे कृष्ण को अपने हाथों से गोकुल छोड़ के आए थे, आज 11 साल के बाद वापस देख रहे हैं। पहले तो ऐसे अचंभे में, जस्ट दे वर स्ट्रेंज लुकिंग लाइक दैट, ऐश्वर्य भगवान का उनको ध्यान था। थोड़ी देर के बाद मां की आंखों में आंसू आ गए और स्तन में दूध आ गया, और कृष्ण बलराम को उठा के देवकी ने गोद में ले लिया, और मां ने प्रेम से दूध पिलाया। और कृष्ण कहता है मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया माता पिता, बहुत समय मुझे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा करना। अब माता आज मिली है देवकी, 11 साल के बाद अपने बेटे कृष्ण से हाथों से रवाना किया था, अब तो बलराम जी और मिले, अब आनंद मंगल हुआ। दूसरे दिन विचार करते हैं कि इतने दिन से 11 साल तक इनका अभी संस्कार तो यज्ञोपयुक्त किया ही नहीं है, इनको पढ़ाई तो करनी चाहिए, अभी तक तो बिल्कुल स्कूल में कख पढ़ने ही नहीं गए, क्या करना चाहिए? इनको पढ़ाने के लिए भेजना चाहिए। सांदीपुनि मुनि रहने वाला बनारस का था, लेकिन अवंती का नगरी में इसलिए आके रहा था कि कृष्ण बलराम के गुरु मिलने का उसको सौभाग्य प्राप्त होगा। वो पूर्णमासी को भी साथ लाया था, मधुमंगल भी उसी के संबंध का, उसी के संतान का है। आज कृष्ण और बलराम को अवंती का नगरी भेजा गया, 64 दिनों में 64 विद्याएं प्राप्त की। गुरु बड़ा प्रसन्न हुआ, गुरु मां ने कहा बेटा गुरु दक्षिणा में हमारा बेटा बहुत साल पहले प्रभास क्षेत्र में समुद्र में गुम हो गया था, आपको गुरु दक्षिणा देनी है तो मेरा बेटा लाके दो। कृष्ण बलराम कहते आपका बेटा निश्चित रूप से, मां हम लाके देंगे। कृष्ण बलराम सीधे प्रभास क्षेत्र गए, समुद्र के अंदर प्रवेश किया। समुद्र देवता ने कहा हमारा सौभाग्य आपके दर्शन हुए, क्या सेवा है? बोला यहाँ हमारे गुरु का बेटा, बोला यहाँ नहीं है लेकिन एक असुर यहाँ रहता है, पांच जने। बलराम जी पांच जने हैं? कृष्ण कहा ठीक है, पांच जने हैं तो आए हुए हैं तो इसका उद्धार करते हैं। पांच जने असुर को मारा, वहां से पांच जने शंख भगवान को मिला, भगवान शंख फूंका और सीधे चले गए यमराज की पुरी में। समंतक पुरी कहते हैं। यमराज की पुरी कहाँ है? जो आखिरी पाताल लोक है ना, पाताल लोक से नीचे 30,000 योजन नीचे गर्भोदक्ष सागर है, उसके ऊपर शेषनाग, उसके नॉर्थ ईस्ट ऐसे कोने में ऊपर यमराज की पुरी है, जहां अनफेथफुल लोगों को दंड दिया जाता है। वहां कृष्ण और बलराम गया, यमराज ने स्वागत किया, आप पधारे सेवा बताइए। बोले हमारे गुरु का बेटा, बोले अपने कर्मों से आया है। कृष्ण कहते हमारे आने के बाद कर्म सब कट जाते हैं, लाइए बेटा वापस दीजिए। वहां से यमपुरी से वापस बेटे को लाके और अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में दिया, आशीर्वाद गुरु के लिए। वापस कृष्ण बलराम मथुरा में आए। कंस की दो पत्नियां, एक का नाम अस्ति, दूसरा का नाम प्राप्ति। अस्ति का मतलब इतना है, प्राप्ति का मतलब इतना और कमाऊंगा। अस्ति और प्राप्ति ये डिमांडिक लक्षण है। इदम अस्ति धनम इदम प्राप्तम, ये डिमांडिक नेचर में आता है 16वें अध्याय में। दोनों रोती हुई गई अपने पिता के पास, जरासंध की बेटियां थी। पिताजी हमारे पति का वध हो गया। हाँ, किसने मारा? वो कृष्ण बलराम वसुदेव के बेटे, 17 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध आक्रमण करने के लिए आया। लेकिन युद्ध से पहले एक और बात बता दें, ग्वाल बाल सारे आए थे नंदगांव से, कहा कन्हैया अब तो चलो वापस। कन्हैया बोलता है बाबा कंस के मारने के बाद जरासंध जरूर मथुरा के ऊपर आक्रमण करेगा, और मैं अगर वृंदावन में चलूंगा तो वृंदावन में आएगा और ब्रजवासियों को बहुत संकट होगा, उधर हमारे पास व्यवस्था भी युद्ध करने की नहीं है, इसलिए मैं उनसे निपट कर फिर जल्दी आऊंगा, लेकिन बाबा आप जब याद करेंगे मैं वहां आ जाऊंगा। नंद बाबा तो ग्वाल बालों से घर वापस पहुंचे, लेकिन यशोदा मैया ने कहा कृष्ण बलराम कहां है, क्यों नहीं लाए? अब इतना अधिक प्रेम यशोदा के हृदय में आ गया और कहा कि नहीं लाए तो फिर तुम जीवित क्यों आए, मर गए होते? ऐसे कभी यशोदा ने कहा नहीं था नंद बाबा को, लेकिन आज कृष्ण के अति प्रेम के कारण ये मुख से शब्द मिले हैं, निकले तब नंद कहता है मैं मर ही गया होता, कृष्ण के नाल ना लाता तो मर जाता, मैं मर जाता तो आप भी मर जाती, आप मर जाते तो ब्रजवासी मर जाते। और फिर कृष्ण ने कहा था कि मैं वापस आऊंगा, और वो आता और हमको नहीं पाता तो उसको दुख होता ना, तो वो उसको दुख होना नहीं चाहिए, इसलिए हम रोज मरेंगे लेकिन कृष्ण को दुखी होने नहीं देंगे। ये ब्रजवासियों का बहुत अद्भुत भाव है। आपके घर में कोई मेहमान आए, आपके घर में 5 आदमी का भोजन बना हुआ है और मेहमान 10 आ जाएं, तो आप पहले मेहमान को खाओगे कि खुद खाओगे? खाओगे कि मेहमान को खिलाओगे? मेहमान को खिलाएंगे, भूखा कौन रहेगा? घर का आदमी भूखा रहेगा। कृष्ण प्रेम करता है ब्रजवासियों से, रह रहा है मथुरा में, प्रेम करता है ब्रजवासियों में, ब्रजवासियों से अपनों को भूखा रख रहा है, मेहमानों की देखभाल कर रहा है, लेकिन प्रेम उसका कहाँ है? प्रेम उसका ब्रज के अंदर। आज जरासंध की सेना के साथ मथुरा के अंदर यदुवंशियों को जैसे पता लगा कि उग्रसेन का राज होगा, कृष्ण बलराम आ गए, बूढ़े बूढ़े यदुवंशी एकदम नौजवान हो गए। लिखा है भागवत ने कि कृष्ण को दर्शन करके सब बूढ़े नौजवान हो गए अपने आप, और सब यदुवंशी तो पहले ही देवताओं के अंश थे, भगवान के समान ही थे। आज युद्ध ऐसा हुआ घोर, जरासंध को बंदी बना लिया, और बलराम जी मूसल उठा के बोलता है कृष्णा इसका सर फोड़ू। कृष्ण बोलता है हमारे मामा का सुसर है, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। अरे मामा को मार दिया, सुसर को छोड़ दो, आंख मार के बोलता है, हम कहां बदमाशों को ढूंढेंगे, अपने आप ले आएगा इकट्ठा करके यहां। 17 बार जरासंध ऐसे जो जो जा रहा था वापस, हम हार गए। तो सेनापति ने कहा, महाराज एक बार हारने क्या होता है, दोबारा चलेंगे ना। 17 बार जितने बदमाश जहां जहां थे सब इकट्ठे किए उसने, और हर बार आया, हर बार पकड़ा गया, हर बार कृष्ण का मामा का ससुर को जाने दो। और ऐसे 17 बार, 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों, जरासंध बहुत बड़ा भक्त था ब्राह्मणों का, भगवान शंकर की पूजा करता था, कृष्ण से द्वेष करता था। आप पूजा करो मेरी, इस बार विजय मेरी होनी चाहिए, विजय होगी तो बहुत बड़ा आपको पुरस्कार दूंगा, और मैं हार गया तो महाराज दंड दे दूंगा, मार दूंगा, आप हमारे साथ मंत्र पढ़ते हुए चलो युद्ध भूमि में। इस बार ब्राह्मणों को साथ लेकर जरासंध रवाना हुआ, और दूसरे तरफ से कालयवन, कालयवन कौन है, गर्ग मुनि का बेटा है। गर्ग मुनि के ऊपर कभी यदुवंशी हंसे थे, और गर्ग मुनि ने जाके तपस्या भगवान शंकर की, एक अद्भुत बेटा प्राप्त हुआ जो यदुवंशियों को डराएगा। और फिर एक यवन राज ने आके गर्ग मुनि को प्रार्थना की, मेरे को संतान नहीं है, उनको दे दिया। तो है तो गर्ग का संतान, आज एक तरफ से काल यवन आक्रमण मथुरा के ऊपर करने के आ रहा है, और दूसरे तरफ से जरासंध आ रहा है। कृष्ण का दाऊ भैया, हम दोनों से लड़ेंगे तो मथुरा वासियों को बड़ा कष्ट होगा, ऐसे करते हैं मथुरा वासियों का प्रबंध करते हैं कुछ, क्या करेंगे। विश्वकर्मा को बुलाया भगवान ने, विश्वकर्मा ऐसी सुरक्षित जगह के ऊपर हमारे यदुवंशियों के लिए नगरी बनाओ जहां ये कोई असुर पहुंच ना पाए। हाँ महाराज, समुद्र के बीच में बहुत सुंदर द्वारका का निर्माण हो गया, सुधर्मा सभा आ गई, स्वर्ग लोक से पारिजात आदि आ गए, हर एक देवता ने अपना अपना विशेष स्थान दिया। आज द्वारका के अंदर विश्वकर्मा ने, ऐसी जगह है द्वारका, आज भी लोग सोचते हैं कि ऐसी सेफ जगह और सुरक्षित जगह समुद्र के बीच में, लोग पहले फोर्ट बनाते थे, चारों ओर पानी लगाते थे कि पानी चारों ओर होना चाहिए, कोई अंदर ना आए, ये तो समुद्र के बीच में नगरी बनी थी, अपने आप सुरक्षित थी। अब भगवान ने दाऊ जी को बात, दाऊ जी आप जरा ऐसे करो, इन सबको तो हम भेज लेते हैं योग माया के द्वारा वहां, और आप रुकिए, मैं जरा कालजवन को, कालजवन हमारे मारने के योग्य नहीं है, ये हमारा, हम इसको मारे इसका इसका अधिकार ये नहीं है। अब कृष्ण कालजवन को बोलता, आइए, तो कालजवन पीछे उसके भागता है, रुको, कृष्ण और तेज भागता है, कालजवन पीछे भागता है, भागते 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 धौलपुर के पास पहुंचे। धौलपुर राजस्थान में आता है, मथुरा से आगे जाएंगे धौलपुर आएगा, और धौलपुर के अंदर पहुंचते पहुंचते कृष्ण एक गुफा के अंदर चला गया, और अपना जो कंधे के ऊपर पीला ओतरी पड़ा था ना, वो एक सोया हुआ था उसके ऊपर डाल दिया, और कृष्ण जाके अंदर बैठ गया। ये कालजवन बोलता है, यहां सो गया, उसको मारी लात मारी, सोए हुए ने आंख खोली, कालजवन भस्म होके मर गया। अरे कौन सोया हुआ था, बोला ये मुचकुंड सोया हुआ था, ये मुचकुंड देवताओं के लिए युद्ध करके ऊपर से उनसे आशीर्वाद लेके आया था, जो मुझे जगाएगा आपको, या देवताओं ने कहा जो आपकी नींद खराब करेगा, आपकी आंख खोलते ही भस्म हो जाएगा। भगवान ने बोला इसको इसी के हाथों से मरवाना चाहिए, हम काय के लिए खर्चा करें। अब मुचकुंड देखता है ये पीला कपड़ा कहां से आ गया, और पीला कपड़ा भगवान का ओतरी, उसके अंदर जो दिव्य गुण है और दिव्य वह उसके हृदय में भगवान के लिए भक्ति हुई। भगवान निकल के बाहर आए, मुचकुंड को दर्शन दिया, मुचकुंड का उद्धार किया, और मुचकुंड को कहा अब तुम वापस हमारे धाम जाओ, यहां से तपस्या करना। वापस लौट के कृष्ण बलराम ने कहा, अब सुनो, जरासंध 18वीं बार आ रहा है, इस बार ब्राह्मणों के बल से आ रहा है, और हम और ब्राह्मण आगे गाते हुए आ रहे हैं। कृष्ण बोला क्या गाते आ रहे हैं, बोला जरा कान देखो सुनो क्या बोल रहे, नमो ब्राह्मण देवाय, गो ब्राह्मण हिताय, गोविंदाय। अरे गाते आ रहे हैं कि गोविंद और गाय की रक्षा करने के लिए कृष्ण आया। बोला ये तो मेरा मिशन स्टेटमेंट है, मैं गाय ब्राह्मण की रक्षा के लिए आ रहा हूं, अभी जब इनको मारूं कैसे, क्या करें भैया। बोला आज एक और लीला करते हैं, रण को छोड़ते हैं, हमको लोग रण छोड़ कहेंगे, अब यहां से भागो। अब कृष्ण और बलराम भागे, और जरासंध बोलता है क्यों भागते हो, डरपोक, रुको। अब भागना है तो भागने में भी तो कोई नहीं पहुंचता है ना, दुनिया में लोग भागते हैं तो लोग कहते हैं डरपोक है, लेकिन रणछोड़ का मंदिर बना हुआ है, उसकी पूजा होती है आज भी। भगवान रण से भागे और प्रसन्न पर्वत के ऊपर चढ़ गए, पर्वत के ऊपर तो जरासंध वाले चारों ओर के पर्षद को पर्वत को आग लगा दी चारों ओर से। ठाकुर जी ऊपर से कूद के कृष्ण बलराम दूसरे तरफ से उतर के द्वारका पहुंच गए। जरासंध वापस लौट के चला गया मगध। इस बीच में तीन काम भगवान को करने थे अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए मथुरा में इन युद्धों के बीच में। एक काम यह था कि अक्रूर काका के घर जाना था, उसको वचन देकर आए थे। अक्रूर ने भगवान को बड़े प्रेम के साथ दर्शन किया, फिर कुब्जा के साथ कुछ कुब्जा के पास उद्धव को लेके गए साथ में, और कुब्जा का भी इष्ट पूरा किया। और क्यों कुब्जा के घर गए? कुब्जा के घर इसलिए गए इस न्याय के अनुसार कि जब मैं कुब्जा को वचन दिया हूं उसके पास जा सकता हूं, तो गोपियां तुम्हारे पास कभी मैं वचन देने के बाद नहीं आऊं, ये हो सकता है क्या? गोपियों की महानता को दर्शाने के लिए कि जब कुब्जा को वचन दिया जा सकता हूं तो गोपियां कितनी महान है, आपने आपके लिए मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। और तीसरा भगवान की इच्छा थी कुंती और पांडवों का पता लेना चाहिए। पांडु के मृत्यु के बाद पांडव अनाथ है। अक्रूर काका तुम जाओ हस्तिनापुर में, हमारी बुआ कुंती का पत्र लाओ, पांडवों का पता लेकर आओ। अक्रूर गया, अक्रूर मिला, धृतराष्ट्र से मिला, भीष्म पिता में से मिला। कुंती ने कहा अक्रूर भैया कृष्ण को बोलना कि तेरी बुआ जैसे भेड़िए शेरों के बीच में होती है, ऐसे मैं शत्रुओं के बीच में घिरी हुई हूँ, अब मेरा रक्षा आपके हाथ में। अक्रूर ने यह समाचार भी आके दिया। तो यहाँ भगवान की मथुरा की लीली 17 साल की लीला समाप्त होती है और अब भगवान द्वारका में आके पहुँच गए। यहाँ पूर्व अर्ध भागवत के 10वें स्कंद का पूरा होता है और अब द्वारका लीला शुरू होती है उत्तरार्ध की। कुछ चीज़ें हो सकते हैं छोटी रह गई, उसमें से एक छोटी रह गई है चीज़, इसलिए दोबारा बता देता हूँ। एक दिन द्वार माँ देवकी ने भगवान को नाश्ते के अंदर मक्खन दे दिया। भगवान दरवाजा बंद करके बैठे, किसी से बात नहीं करें, मक्खन भी नहीं खाएं, खाना भी बंद कर दिया, बात करना भी बंद कर दिया। सब घर वाले परेशान हुए, उद्धव को बुलाया। उद्धव भगवान का मित्र भी है और भगवान का मंत्री भी है और बहुत प्रिय सखा भी है। उद्धव ने पूछा क्या बात है कृष्ण? बोला मैया को बोलना मक्खन देने से मुझे ब्रजवासी याद आते हैं, वो मैंने वहीं खाना छोड़ दिया, अब मुझे मक्खन मत दिया करो, लेकिन अब मुझे ब्रजवासी इतने याद आए हैं। हाथ पकड़ के उद्धव को जमुना के किनारे ले गए। बोला उद्धव का हाथ हाथ में लेकर पकड़े हुए बोलते उद्धव तुम मेरे मित्र भी हो, वृष्णिवंशियों में श्रेष्ठ भी हो और मुझे बहुत प्रिय भी हो, प्रेष्ठ हो। 7 विशेषण भगवान ने उद्धव के दिए। एक काम करो उद्धव, तुम्हारा शक्ल भी मेरे जैसा है, तेरे को कपड़ा भी मेरे देता हूँ, रथ भी मेरा देता हूँ, तुम मेरा संदेश लेके वृंदावन चले जाओ, नंद बाबा को यशोदा मैया को मेरा संदेश देना। और गोपियां तुम्हारे संदेश से संतुष्ट नहीं होंगी, उसको लिखी हुई मेरी चिट्ठी देना, वो पढ़ेंगी। और यहां कृष्ण कहते हैं उद्धव गोपियों ने मन मुझे दे दिया है, वो मेरे लिए प्राण भी त्याग देंगी, बड़ी सावधानी से उनके साथ रहना। लेकिन उद्धव के भेजने में भगवान का ये भी उद्देश्य था कि उद्धव बृहस्पति का शिष्य तो है, ज्ञान में प्रवीण है, लेकिन प्रेम भक्ति का भी कच्चा कोरा है, गोपियों से सीख के भी आएगा, मेरा संदेश भी देकर आएगा। 2 कामों से उद्धव को भगवान ने भेजा था। उद्धव रात को गया, दूर से देखा उद्धव को आते, गोपियों ने कृष्ण आ रहा है शायद, रंग भी उद्धव का वैसा ही है, रथ भी वैसा है, लेकिन गोपियों के हृदय में काम वासना तो थी नहीं। देखा ये कृष्ण नहीं, कोई और है, कहाँ जा रहा है? देखो नंद बाबा के घर में गया है। नंद बाबा ने रात पूछा हमको कृष्ण याद करता है? यशोदा बोल नहीं पाई, केवल देख रही थी, केवल नंद बाबा से बात हो रही, क्या कृष्ण हमको याद करता है? उद्धव कहता है मेरे को तो भेजा है आपको समाचार देने के लिए, कृष्ण आपको बहुत याद करते हैं, आपके पास आएंगे निश्चित रूप से, मुझे भेजा है। सारी रात ऐसे बात कर रहे थे। दूसरे दिन सुबह ज्ञान गुदड़ी का स्थान है, वहां उद्धव गोपियों के साथ जाकर मिला। एक गोपियों ने आके चारों ओर से उद्धव को घेर लिया। उद्धव ने चिट्ठी दी गोपियों की और गोपियों को हो गया उन्माद। उन्माद क्या, पागलपन का दौरा पड़ा। और गोपियां उद्धव की ओर देखें और एक भंवरे को देखकर कहती है ये काला भंवरा मेरे पास मत आना, तेरी मूछों के ऊपर क्या लगा हुआ है, कुमकुम लगी हुई है, किसके वहां से कुमकुम लगा के आया हो? कृष्ण को लक्षित करके भ्रमर गीत गाया गोपियों ने। और ये भ्रमर गीत जब गाया उद्धव केवल देखता रह गया कि गोपियां तुम कृष्ण की चिंता क्यों करते हो, तुम बैठ के ध्यान करो, मन लगाओ। बोला उद्धव एक मन था, वो तो कृष्ण ले गया, दूसरा कहां से लाए लगाए, एक ही था ले गया। और ब्रह्मा जी के ऊपर बोलते, ब्रह्मा जी कैसा, अरे कभी कभी देखती थी कृष्ण को आते हुए, एक आंख तो रखती थी हमारे उनके ऊपर, जो हमारे के ऊपर हमारी निंदा करने वाले सास ससुर है उनको देखती थी, कोई हमको देख तो नहीं रहा है, एक आधी अंग से ऐसे कृष्ण को देखती थी, उसके ऊपर उस ब्रह्मा मूर्ख ने दो पलकें ढक दिया, ऐसे हो जाता है, इसको आंख भी नान बनाने नहीं आती। गोपियां ब्रह्मा को भी कहती हैं किसी काम का नहीं है, आंख ऐसी बनाई है। और फिर कहती हैं उद्धव बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, उधर गोपी को देखता है, हाथ में बच्चा लिया है, पानी भरने का मटका लिया है, कुएं के ऊपर जा रही है, रस्सी बांधनी थी मटके में, रस्सी बांधी बेटे के गले में और बेटा बेटा डाल रही है कुएं में। उधर उधर कहता है ये क्या कर रही है, बोला पानी भर रही हूं ना, बोला मटका नहीं है बेटा है। बोला क्या, वो देखो कृष्ण बैठा है कदम के झाड़ के ऊपर, देखो बांसुरी बजा रहा है। उधर बोला किसको, कृष्ण हर जगह दिखता है और इतना कृष्ण में तन में है कि मटके में रस्सी बांधनी है कि बेटे में बांधनी है, इतना पता नहीं लग रहा है। और तब उद्धव कुछ महीने रहने के बाद उद्धव ने कहा कि ब्रह्मा जी ने तो ये कहा था कि ब्रज की सीमा के अंदर मैं अगर कोई लता पता हो जाऊंगा, कोई वृक्ष हो जाऊंगा, तो आते जाते ब्रजवासियों के चरणों की धूली लगे तो मेरा जन्म सफल होगा। उद्धव कहता है इन गोपियों को प्रेम को देखकर मैं इस निर्णय के ऊपर पहुंचा हूं कि ब्रज के अंदर लता पता होना भी बड़े भाग्य की बात है, कि गोपियां आते जाते कभी चरण इनका लग गया तो हमारा जन्म सफल हो जाएगा। उद्धव ने कृष्ण को यह सारा समाचार आकर दिया और कृष्ण को कहा तुम जाओ जल्दी, आपको गोपियां याद कर रही हैं। लेकिन कृष्ण आया नहीं। और यहां से द्वारका की लीला में पहुंचते ही रघु, अब तो द्वारका के अंदर बहुत सुंदर भवन मिल गए, द्वारका का वैभव सुंदर। और तब चर्चा क्या चल रही, अब तो कृष्ण का विवाह करना चाहिए, बड़ा हो गया अब तो कृष्ण के विवाह का टाइम हो गया, अरे विवाह कृष्ण का करे, पहले बलराम बड़ा बैठा है उसका करना चाहिए ना। तब तक ब्रह्मा के वहां से गया हुआ रेवत का बेटा कुक्षी अपनी बेटी रेवती को लेकर पहुंचा आके द्वारका में। बोला ब्रह्मा जी ने कहा है बलराम जी के साथ विवाह करना है। सबने कहा चलो, बड़े का विवाह हो गया, कृष्ण का रास्ता खुल गया, बलराम जी का विवाह सुख से हो गया। और बैठे हुए हैं सुधर्मा सभा में, एक ब्राह्मण प्रवेश करता है। ब्राह्मण को आदर देने के लिए क्षत्रिय मर्यादा से भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को बड़ा आदर दिया, चरण धोए, आसन ऊपर दिया, स्वयं बैठ के कहते हैं, एकांत में बैठ के कहते हैं अवंतिका नगरी में, अवंतिका नहीं विद्रभ नगर में सब सुख तो है ना, ब्राह्मणों की देखभाल अच्छी होती है, गाय की रक्षा ठीक हो रही है ना, आप यहाँ आए हो, कोई आपका उद्देश्य है? ब्राह्मण देवता कहता है उद्देश्य नहीं, मैं संदेश लाया हूं, मैं महाराज भीष्मक के पांच पुत्र हैं, पांचों में से बड़ा जो है ना रुक्मी आपसे बहुत बड़ा द्वेष करता है, उनकी एक बहुत सुंदर कन्या है जिसका नाम तो मैं बाद में बताता हूं, कहती है स्वर्ण वर्णी है, सोने जैसा उसका अंग है, रुचिर आनंद है, उसका मुख बहुत सुंदर है, जो देखे उसको आनंद आ जाए। और उसने कहा है, कहो तो चिट्ठी पढ़ के सुनाऊं, कहो तो मुख से सुनाऊं कृष्ण, उसने कहा है मैं नारद आदि ऋषियों से आपकी इतनी कथा और महिमा और सुंदरता का वर्णन सुना है कि मैंने संकल्प किया है कि मैं आपके साथ अपने आप को विवाह के रूप में अर्पित करती हूं, लेकिन मेरा भाई रुक्मी मेरे को जबरदस्ती शिशुपाल के साथ शादी कराना चाहता है। फिर रुक्मण ने कहा मैं आपके समान कुल में भी हूं और विद्या में भी हूं, सुंदरता में भी हूं, और मैं भी भीष्मक की पुत्री हूं, लेकिन मैंने इससे एक सीखने की बात यह मिलती है, रुक्मणी ने कृष्ण को देखा कभी नहीं था, केवल कथा सुनी थी, और नारद आदि जब आते थे तो कृष्ण की महिमा गाते थे, इससे सीखने को यह मिलता है कि कृष्ण की कथा से कृष्ण से प्रेम होना चाहिए, रुक्मणी की तरह देखने की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। और आज पंडित जी कहते हैं ब्राह्मण के, रुक्मणी ने कहा बाकी दिन दो बचे हैं, बारात आ चुकी है, मंगल कार्य शुरू हो गए हैं, अगर आप आए और मुझे ले गए तो ठीक है, नहीं तो मैं शरीर छोड़ के कितने भी जन्म लेने पड़े मैं तो केवल आपका हाथ पकड़ूंगी। और फिर मुझे कहा है रुक्मणी ने कि आप अगर मुझे पूछो कि कैसे मैं और को ले जाओगे तो मैं आपको बताती हूँ। विवाह के दिन हमारी सुबह सुबह पूजा होती है देवी की कोंडनीपुर में, तब मैं कुछ सहेलियों के साथ अकेली बूढ़ी माताओं के साथ जाती हूँ, तुम वहां से मेरा अपहरण कर सकते हो। ये विवाह, इस विवाह को बोलते हैं गंधर्व विवाह। चिट्ठी के द्वारा एक दूसरे को पसंद किया, इसका नाम है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह हो गया। और कृष्ण ने कहा, पंडित जी मेरा भी मन रुक्मणी के लिए बहुत अधीर हो रहा है, चलो अभी चलते हैं, टाइम बहुत कम है, दारुक रथ लाओ। रथ के ऊपर ब्राह्मण को बिठाया, हाथ देकर भगवान ने रथ तीव्र गति से चला और आके विद्रभ देश में पहुंचा। जरासंध की कैंप लगी हुई है, शिशुपाल की लगी हुई है, दंडवकर की लगी हुई है, शाल्व की लगी हुई है, विदुरथ की लगी हुई है, ये सब शादी वाले आके बैठे हुए हैं। अकेले रुक्मणी के मंगल कार्य हो रहे हैं, उसको मेहंदी लगा रहे हैं, वो कह रही अभी तक पंडित भी नहीं आया, एक दिन बाकी बच गया, अभी संदेश भी नहीं आया है, क्या करना चाहिए। तब तक पंडित अंदर आया और पंडित को मुस्कुराता देखते हुए रुक्मणी कहती है, पंडित नमस्कार, क्या समाचार, क्या कहा। कृष्ण बोला, कृष्ण आ गए हैं, कृष्ण आ गए हैं। फिर रुक्मणी ने कहा नमस्कार। आचार्य कुछ टीका करते हुए लिखते हैं, रुक्मणी तो साक्षात लक्ष्मी थी, आज ब्राह्मण को कुछ दे दिया हुआ था एक माला, तो ब्राह्मण भीख भूखा नहीं रहता, गरीब नहीं रहता, लेकिन कुछ नहीं दिया, केवल कहा नमस्कार, ब्राह्मण को केवल नमस्कार ही किया। रुक्मणी जी ने इतना ही किया, ब्राह्मण तो वहां से चले। दाऊ जी कहते, कृष्ण कहां चला गया, हां कृष्ण कहां गया, विद्रभ देश में गया है। अरे वहां तो जरासंध हमारे शत्रु, एक अक्षौणी सेना यदुवंशी के लिए और पीछे तीव्र गति से बलराम जी सेना लेकर वहां आया। जैसे वो पहुंचा तो महाराज भीष्मक ने यदुवंशियों का स्वागत किया, उनको भी एक बहुत सुंदर शिविर दे दिया पैलेस। अब शिशुपाल वाले कहते, ये कैसे आए, इसको किसने बुलाया है, भीष्मक ने बुलाया है। और भीष्मक सोचता है कि यदुवंशी शायद शिशुपाल के मासी का लड़का है, उन्होंने बुलाया होगा। अब किसी को पता नहीं है कि वो लड़की की तरफ से है कि लड़के की तरफ से। और ये उस वक्त में कन्फ्यूजन हुई थी, आजकल सब शादियों में ये कन्फ्यूजन होती है, कुछ लोग हैं उनके पास एक पैंट एक कोट है, किसी की शादी है उसमें खड़े होते हैं, लड़के वाले समझते हैं इसकी तरफ से, लड़की वाले समझते वो किसी की तरफ से नहीं होते। ए, बड़ी कन्फ्यूजन हो गई। अरे कृष्ण, हरे कृष्ण, भगवान का विवाह करा दें, भगवान सुख से अपने घर रहे, बाकी अगले साल जब बच्चे होंगे तब हम चलेंगे भगवान के पास, लगता है घड़ी ऐसे बोल रही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन पूजा का समय हुआ, रुक्मणी को माताएं लेकर कुछ बड़ी अवस्था की कोंडनीपुर के देवी के मंदिर में गई। आज भी वो देवी का मंदिर वहां है, नदी का छोटा सा किनारा है, अमरावती से 40-45 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ अभी इस्कान ने एक छोटा मंदिर भी बनाया है, रुक्मणी द्वारकाधीश का मंदिर वहाँ होना चाहिए। तो वहाँ रुक्मणी पूजा करने गई, पंडित जी बोला है गणपति नमः, रुक्मणी कहते गणपति नमः, कृष्णपति के रूप में मिले स्वाहा, लेकिन कृष्णपति के रूप में मिले ये बहुत आस्ते बोलती है। बाकी पूजा पूरी हो गई, बाहर पैदल निकली रुक्मणी, बाहर पैदल निकली और रुक्मणी के चेहरे की मुस्कुराहट और उसके दांतों की सफेद जो मोती जैसी पंक्ति है, वो उसके अंदर से ऐसा कोई जादू निकल रहा था। खड़े हुए जो सुरक्षा के सैनिक थे ना, वो ऐसे मूर्ख की तरह देखते हुए अस्त्र शस्त्र नीचे गिर गए। सब केवल रुक्मणी को देख रहे और रुक्मणी सबके बीच में केवल कृष्ण को ढूंढ रही है। दूर से देखा कृष्ण रथ के ऊपर है, दिल कहा कि भाग के चढ़ूं, लेकिन मर्यादा के अंदर रुक्मणी रही। कृष्ण एकदम आगे आया, हाथ देख के रुक्मणी को रथ के ऊपर चढ़ा और भेड़ियों के बीच से शेर अपना शिकार जैसे उठा के जाता है, ऐसे कृष्ण ने रुक्मणी को उठाया और रथ के ऊपर, चारों ओर से पकड़ो पकड़ो पकड़ो, शिशुपाल की दुल्हन लेके जा रहा है। अब तो हाय हाय मच गई, अस्त्र शस्त्र सबने उठा लिया। रुक्मणी ने चारों ओर देखा, ये तो इतने सारे योद्धा है। कृष्ण को बोलती अभी क्या, बोला ससुराल पहुंच जाओगी, चिंता मत करो, दाऊ भैया है यदुवंशी, अपने आप इनको देखेंगे, अपन चलते हैं। क्या क्या बोल रहा है भैया, हरे कृष्ण बोला, क्या बोलता है, पूछो पूछ के बताओ, भगवान ने भेजा है कि बोलो बंद करो कथा। कभी बोलता नहीं, आज क्या कहने आ गया, क्या बोलता है पूछो, शू कैसे शादी में चलना है उधर तो मीठा तो तुम खाएगा नहीं, क्या खाएगा उधर, कचोरी खाएगा, कचोरी। हरे कृष्ण, बोल जल्दी जाओ, फ्लाइट यहां होने वाली। अरे कृष्णा, कोई बात नहीं, पूछ लो क्या कह रहा है प्रेम से। अब कृष्ण तो रथ को लेके आगे गया, पीछे बलराम जी ने यदुवंशियों को खड़ा कर दिया और युद्ध हुआ, सब भागे। रुक्मी ने कहा, मैं अगर वापस नहीं लाया मेरी बहन को कृष्ण को मार के, तो मैं इस वापस अपने नगर में आऊंगा ही नहीं। रुक्मी वहां गया वापस, जरासंध शिशुपाल को कहते, शिशुपाल तुम्हारी दुल्हन को तो लेके चला गया। शिशुपाल बोलते हैं, बाकी बाराती कितने दिन बैठेंगे, शादी तो होने वाली नहीं है। जरासंध बोलते हैं, देखो 17 बार पहले मैं भी हार के आया था, अपना टाइम भी आएगा, चिंता मत करो। अब शिशुपाल को आश्वासन दे रहा है, लेकिन शिशुपाल रो रहा है कि शादी के लिए आया था और मैयत निकल रही है मेरी। रुक्मी वहां से पीछे भागता हुआ पहुंचा, जाके कृष्ण रुक्मणी को ले जाते, गालियां दे रहा है, ग्वाला कहां ले जा रहा है मेरी बहन को, और बाण भी चला रहा है। भगवान ने बाण चलाना शुरू किया, रुक्मी के धनुष को काट दिया, भगवान ने रुक्मी को पकड़ा और तलवार निकला दी। तब रुक्मणी ने भगवान के चरण पकड़े, बोले मेरे भाई की रक्षा करो, मेरे भाई को मत मारो। कोई बात नहीं, आप कहती है तो जीवित रहने, तो थोड़ा सा इसका शकिल तो ठीक करो ना, तो एक मूछ काट दी, थोड़े से बाल काट दिए, और रथ का जो खूंटा होता है ना एक पीछे, उसके ऊपर कनोपी होती है, उसमें कपड़े से बांध के रख दिया। दाऊ जी सबको हरा के वहां आया, दाऊ जी ने देखा आके, अब दाऊ जी बड़ा है, क्या करता है, अपने साले से ऐसे करते हैं, कृष्ण इतना बड़ा अपमान किया इसका, तुम्हें ऐसे थोड़ी करना चाहिए। और फिर रुक्मणी को कहते हैं, बहू चिंता मत करो, काल का है, कभी कोई आगे जाता है कभी कोई पीछे जाता है, आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और फिर कहता है, ये अच्छा है, इसको ऐसी हालत की, इसके मूछ काट दिए, एक दाढ़ी काट दिए, ये कैसे कर दिया, कृष्ण तुम अच्छा काम नहीं किया, अपने अपने साले से कुछ लोग ऐसे करते हैं। आज बलराम जी साले की सुरक्षा कर रहा है, और आगे चल के जब विवाह के लिए जाए, अनुरुद्धा के बेटे के लिए जाएगा, तभी इसी रुक्मी को मारेगा बलराम जी, अभी सुरक्षा कर रहा है उस वक्त मारेगा, खुद ही उठा के दे मारेगा मूसल सर के ऊपर। अब रुक्मी यहां से वापस गया भी नहीं, जाके अपना नया नगर बसाया, और भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आए। अब ये दूसरा विवाह हुआ राक्षस विवाह, पहला हुआ गंधर्व विवाह चिट्ठी से, ये राक्षस हुआ भगाया, अब हो रहा है विधिवत विवाह। अब विवाह का समाचार वापस भीष्मक महाराज अपने 4 और बेटों को लेकर गए, कन्यादान किया। हमारे तो बहुत बड़े प्रेमी आचार्य कहते हैं, नंद बाबा को भी संदेश भेजा था, नंद बाबा भी आए, कृष्ण को पहली बार देखा, ऐसे भाव अलग अलग है, लेकिन कृष्ण की पहला शादी तो बड़े प्रेम से हो गई। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी आज द्वारका में पधारी है, और तब तक बैठे हुए सुधर्मा सभा में सामने से देखते हैं कृष्ण, सूर्य तो सुबह उगा था, ये दूसरा कहां से सूर्य आ रहा है। बोला, ये सूर्य नहीं है, ये है, कौन है, हरे कृष्णा, सत्राजीत है। सूर्य की उपासना की है, सूर्य ने कृपा करके एक मणि दी है, और रोज किलो के हिसाब से नहीं सोना उगर देती है, और मणि गले में डालता है तो बड़ा प्रकाश निकलता है। श्री कृष्ण ने कहा, सत्राजीत ये मणि सोना देती है ना, ये तुम खजाने में, कोष में, ट्रेजरी में दे दो, ये सरकार के पास होना चाहिए। नहीं, क्यों दूंगा मैं, मैंने तपस्या की है, सूर्यदेव ने मेरे को दिए। घर गया, उसका भाई प्रसन्न ने वो मले को मणि को गले में डाला, चला गया जंगल में, जंगल में चला गया, शेर ने आके प्रसन्न को मारा, और शेर मणि लेके वहां से भागा। आगे क्या हुआ ये पता नहीं, गांव में आके ये हल्ला हो गया, कृष्ण ने मणि चुरवा दी, कृष्ण ने मणि चुरवा दी, सत्राजीत की मणि कृष्ण चुरा। अरे कृष्ण ने बोला, ये तो हमारे ऊपर गलत इल्जाम लग गया, अब क्या करना चाहिए। कुछ यदुवंशियों को साथ लिया और ढूंढने निकले, जाके देखा एक जगह घोड़ा मरा हुआ है, ये तो सत्राजीत का भाई मरा हुआ है प्रसन्न। अरे यहां तो देवी के वाहन के नाखून के निशान पड़े, शेर था, शेर को ढूंढते हुए जाके देखें तो आगे शेर मरा हुआ है, अरे यहां तो रीछ के निशान पड़े। अब रीछ के पांव उठा के जाते हैं तो एक गुफा है। ये गुफा कहाँ है? ये गुफा द्वारका से सोमनाथ जाएंगे रास्ते में तो जहाँ सुदामा का जन्म हुआ था, क्या जगह, पोरबंदर। पोरबंदर से थोड़ा सा आगे अंदर जाएंगे तो वो स्थान आज भी है जहाँ जामवन की गुफा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम लोग यहाँ रुको, मैं गुफा में प्रवेश करता हूँ। गुफा में जाते ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा एक बच्चा मणि से खेल रहा है। बच्चे के हाथ से मणि ली, बच्चा रो के अंदर गया और बच्चे को रोता हुआ देख के जामवन उठ के और कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। यहाँ तो 15-16 दिन बीत गए, यदुवंशी थक के वापस आए और वहाँ आके पूजा करने लगे देवी की कि वापस कृष्ण सुख से लौट के आए। और यहाँ जामवन और कृष्ण के बीच में 17 दिन के 21 दिन का युद्ध चला। जामवन बोलता आज तक मैं थका कभी नहीं हूँ, ये कौन है जिसके साथ मैं युद्ध कर रहा हूँ और अभी तक मैं थक गया हूँ और ये थक नहीं रहा है। जामवन ध्यान करके देखता है तो उसको श्री कृष्ण के अंदर श्री राम की छवि दिखाई दी। अरे ये तो मेरे मालिक हैं, मैं पहचान नहीं पाया। प्रणाम किया और प्रणाम करके जामवंत कहता मैं आपको पहचान नहीं पाया, ये मणि तो लो लेकिन अब मणि मैं आपको जहेज में देता हूँ, ये मेरी बेटी जामवती भी आपको मैं दे देता हूँ। तो असल में भगवान मणि लेने नहीं ले गए थे, जामवती को भगवान ने ग्रहण करना था। आज जामवती का पानी ग्रहण किया, भगवान जामवती को मणि के साथ लाए वापस और मणि सत्राजीत को बोला ये तेरी मणि, ऐसे मणि ऐसे मिली है मेरे को। सत्राजीत को सब में शर्म आई कि अब मैं कैसे इस मणि का भार उतारूं। अपनी बेटी सत्यभामा को भगवान के साथ शादी करा दी। ये तीन शादियां भगवान की बेफिक्र हो गई। भगवान आए हुए थे कृष्ण हस्तनापुर में यज्ञ के लिए, यज्ञ पूरा हुआ, अर्जुन घूमने चलते हैं कहाँ, बोला जमुना के किनारे। घूमते हुए देखते हैं ओ लड़की कौन तपस्या करती है, अर्जुन देख के तो आओ। अर्जुन कहते कौन तपस्या कर रही हो, आप क्यों कर रही हो? बोला मेरा नाम कालिंदी है, मैं श्री कृष्ण को वरण करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा कृष्ण वो कालिंदी है, जमुना उसका नाम है, कालिंद पर्वत की बेटी है और ये आपके विवाह के लिए, लेके आओ खर्चा नहीं करने का है बिठाओ रथ पे ले चलते हैं, तो ये बगैर खर्चे वाले सारे विवाह। फिर वहां से वापस विधिवत भगवान ने विवाह किया। ये कितनी हो गई, चार। चार और रानियों के साथ भगवान ने विवाह किया, उसमें से भी तीन को तो उठा के भगा के लाए, एक के साथ सिर्फ जेज आया था। अवंतिका के अंदर मित्रविंदा है और मित्रविंदा के भाई कृष्ण को देने नहीं जाते और कृष्ण वहां से उठा के उसको लेके आया। फिर रुक्मणा को उठा के लेके आया मधुर देश से, ये छह हो गई। फिर सत्या और फिर एक बची नांगन जीती, उसके पिता ने कहा मेरी बेटी उसको दूंगा, ये सात बैल है, इन सात बैलों से जो युद्ध करे, जितने आए बैलों के साथ हाथ पांव तोड़ा के चले गए। कृष्ण बोलता है कुछ दूं फिर कुछ मैं लूं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। बोला नहीं महाराज मैंने ये विनती की आपके। कृष्ण एकदम अपने को सात में विभाजित किया, एक एक बैल को पकड़ा और उसको नथ के खड़ा कर दिया। तब तो इसको बड़े हाथी घोड़े मिले, एक यही लड़की के साथ जहेज मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। अब भौमासुर, अब आया इंद्र ऊपर से उतर के, कृष्ण को बोलता है मेरी माँ आदिति के कुंडल ले गया, दे नहीं रहा है भौमासुर। अच्छा ओ वरुण वरुण देव का छाता कुछ लेके चला गया है, तो बड़ी समस्या है, क्या करना चाहिए, चलो भौमासुर के पास। कृष्ण ने आक्रमण किया भौमासुर के। बाहर मूड़ा राक्षस, वो छह सर वाला बैठा था, मूड़ा को मारा, भगवान का नाम मुरारी हुआ और फिर भौमासुर के साथ युद्ध हुआ। भौमासुर को मारा तो वहां 16,000 कन्याएं उसने काबू करके रखी थी कैद में, 16,000 कन्या बाहर निकली, कहा अब तो हमारे को कोई संसार में स्वीकार नहीं करेगा, समाज हमको प्राप्त नहीं करेगा। कृष्ण का जिसको कोई नहीं करता है मैं करने को तैयार हूँ। 16,108 के साथ महल बना रहे भगवान, वहां आनंद कर रहा है, आप यहाँ प्रसाद खाओ और हम चलते हैं हरे कृष्णा। बाकी कथा चलती रहे तो अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।